नमस्कार श्रोता, कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से मीका नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक का मुख्य विषय है न्याय और राज्य। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब परमेश्वर पिता की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने प्रियों के साथ तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं उन सभी मित्रों का धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारे इस कार्यक्रम को सुनकर पत्र के माध्यम से अपनी गवाही हम तक पहुंचाते हैं, अपनी आशीषों को हम तक पहुंचाते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं उनका और उन सबों का भी जो इस समय परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। मैं आशा करूंगा कि आप सब भी परमेश्वर की आशीषों को हमें बताएंगे ताकि हम सब मिलकर उसको धन्य कहने पाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इन दिनों मीका नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। आज भी हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय और संगति के लिए जिसे आपने हमें दिया है ताकि हम दूर दराज में रह करके भी एक साथ आपके वचन का अध्ययन रेडियो के माध्यम से कर सकते हैं। जब हम इस समय मीका नबी की पुस्तक से अध्ययन करते हैं तो हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को जो अलग अलग स्थानों पर बैठकर इस वचन को सुन रहे हैं उनकी आत्मिक आंखों को, कानों को, हृदय और विचारों को आप खोल दीजिए, उन्हें एकाग्रता पन दीजिए ताकि जब वे आपके वचन को सुने तो आपका वचन उनके हृदय से बोलने और बातचीत करने पाए। उनके जीवन के हर एक प्रकार की त्रुटियों को, कमी घटियों को आप उनके जीवन से दूर करें, उन बुराइयों को उनके जीवन से दूर करें ताकि वे सच्चाई को जानकर आपकी सच्चाई के पीछे चल सके। हमारी विनती है उन भाई बहनों के लिए जो इस समय निराश हैं, परेशान और चिंता में हैं, तनाव में हैं, पिताजी आप उन्हें भी अपनी शांति प्रदान करें। जो बीमार अवस्था में हैं, आप उन्हें भी छुए और चंगाई दें, शारीरिक और मानसिक रीति से, आत्मिक रीति से उन्हें चंगाई प्रदान करें ताकि आज का वचन उनके जीवन के लिए आशीष का कारण बन जाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, इसराइल के बाद यहूदा के दंड और विषाद की चर्चा करने के बाद मीका उनके दूरस्थ भविष्य की चर्चा करता है कि सब लोग यहोवा के भवन में जाएंगे और प्रभु यीशु उन्हें अपने मार्ग सिखाएगा। यरूशलेम से यहोवा का वचन बाहर जाएगा। प्रभु यीशु सामर्थी राष्ट्रों का भी न्याय करेगा। उस युग में युद्ध करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस कारण लोग निशस्त्रीकरण कर दिए जाएंगे। उनके पास कोई भी लड़ाई विद्या नहीं होगी, लड़ाई के हथियार नहीं होंगे। इसराइल की प्रजा अपनी अपनी दाखलता और अपने अपने अंजीर के वृक्ष के नीचे निडर होकर बैठा करेंगे। उस युग में सब लोग यहोवा परमेश्वर की उपासना करेंगे। सेनाओं के यहोवा ने यही वचन दिया है। तो आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और मीका नबी की पुस्तक 4 अध्याय उसके 6 पद से पढ़ेंगे। मीका 4 उसके 6 पद में लिखा हुआ है, यहोवा की यह वाणी है, उस समय मैं प्रजा के लंगड़ों को और जबरन निकाले हुओं को और जिनको मैंने दुख दिया है उन सब को इकट्ठे करूंगा। ध्यान दीजिए, लिखा है उस समय, अर्थात मीका अब भी प्रभु राज्य के विषय में चर्चा कर रहा है। प्रजा के लंगड़ों को, ये लंगड़े जबरन निकाले हुए हैं, दुख दिए हुए हैं, और ये दुख दिए हुए कौन है? ध्यान दें कि परमेश्वर कहता है जिनको मैंने दुख दिया है। परमेश्वर इस्राएल की त्रासदी का दोष अपने ऊपर में लेता है। मेरी एक बार एक यहूदी से भेंट हुई जो जर्मनी के नाजी शिविर से कष्ट उठाकर आया था। उसका कहना था कि उनके उत्पीड़न के समय परमेश्वर कहां था, उसने उनका उद्धार क्यों नहीं किया, यदि परमेश्वर होता तो वह निश्चय ही कुछ करता। मेरे मित्रों, आज भी हम में से कई लोगों का यही कहना है जब हमारे जीवन में किसी प्रकार की विपत्ति आती है और हम सही होते हैं, फिर भी हमारे ऊपर में विपत्ति आती है, तब हम कहते हैं कि वो परमेश्वर कहां है। यही बात यहां पर भी हुई है। मैंने उससे कहा कि सबसे पहले उन्हें जीवित परमेश्वर को जानने का अवसर मिला था। ज्योति तो उनके मध्य थी, हम लोग तो उस समय तुच्छ अन्य जाति थे। उन्हीं के धर्मशास्त्र में लिखा है कि यदि वे जीवित परमेश्वर से मुंह मोड़ लेंगे तो दंड पाएंगे, और परमेश्वर की इच्छा है कि उन्हें पुनः स्थापित करे। परमेश्वर ने उनका त्याग नहीं किया है। जी हाँ, यह परमेश्वर का जगत है और आप उसका ज्ञान कष्ट उठाए बिना अस्वीकार नहीं कर सकते। आगे हम देखते हैं कि आप अपनी बुराई का दोष शैतान पर नहीं डाल सकते। आपका पुराना स्वभाव आपसे बुराई करवाता है क्योंकि वह परमेश्वर से दूर है। मैं यह भी सुनता हूं कि लोग कहते हैं मैं परमेश्वर के सामने रखूंगा। आप किसी के पाप परमेश्वर के सामने नहीं रख सकते, वह तो सब जानता है। वह आपके पाप को भी जानता है। आप जितने भी गुप्त रूप में पाप करते हैं उन सब पापों को वह जानता है। मेरे मित्रों, हम दंड भोगे बिना परमेश्वर का इनकार नहीं कर सकते। मीका के युग में परमेश्वर ने उनकी त्रासदी का दोष अपने ऊपर में ले लिया था। परमेश्वर ने मुझसे नहीं कहा कि मैं इसकी व्याख्या करूं। हमारे लिए यह एक चेतावनी है। मीका नबी के पुस्तक 4 अध्याय उसके 7 पद में हम आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, और लंगड़ों को मैं बचा रखूंगा और दूर किए हुओं को एक सामर्थ्य जाति कर दूंगा, और यहोवा उन पर सियोन पर्वत के ऊपर से सदा राज्य करता रहेगा। यहां पर फिर से लिखा है, और लंगड़ों को मैं बचा रखूंगा। इसराइल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि संपूर्ण राष्ट्र में परमेश्वर की आराधना की गई हो। एक बचा हुआ भाग ही परमेश्वर का निष्ठावान सदैव रहा था। परमेश्वर ने एक बचे हुए समूह को सदैव अपने नाम के निमित्त सुरक्षित रखा हुआ था। प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने वाला भी इसराइल का बचा हुआ समुदाय था। मिस्र से निकलने वाली तो संपूर्ण पीढ़ी जंगल में ही नष्ट हो गई थी, समाप्त हो गई थी। उनकी संतान ही प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश कर पाई, जो एक नई पीढ़ी थी। एलिया के युग में भी परमेश्वर के भक्त एक बचा हुआ समूह ही थे। पहला राजा की पुस्तक 19 अध्याय उसके 10 पद में एलिया ने निराश होकर परमेश्वर को पुकारा और कहा, हे प्रभु, एक मैं ही बचा हूं। परमेश्वर ने उससे कहा कि वह अकेला नहीं है, उन पर्वतों में उसके 7,000 भक्त हैं जिन्होंने बाल देवता की उपासना कभी नहीं की है। क्योंकि वे आहाब और इजेबेल के भय से सामने नहीं आए थे, इसलिए एलिय्याह उनके बारे में नहीं जानता था। मेरे मित्रों, आज भी उनके समान अनेक गुप्त विश्वासी हैं, जो संसार की आंखों से छिपे हुए हैं। वे संसार से डरते हैं और यही कारण है कि वे गुप्त विश्वासी हैं। प्रभु यीशु के युग में भी उस पर विश्वास करने वालों का एक अज्ञात समूह था। पेंतिकोस्त के दिन हजारों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, परंतु वे वास्तव में एक छोटा समुदाय ही थे। आज भी उसका नाम उठाने वाला एक अनजान समूह कलीसिया में है। मैंने कहा है कि संसार में विश्वासियों की संख्या हमारे अनुमान से अधिक है, परंतु कलीसिया में सच्चे विश्वासी बचे हुए हैं और बचे हुए ही कहलाएंगे। जो वहां पर आते हैं वे ही विश्वासी कहलाएंगे। यदि हम यह जान लें कि कलीसिया में सच्चे विश्वासी कितने हैं, तो निश्चय ही आप आश्चर्य करेंगे, जबकि मसीही समुदाय में और मसीही सेवा में सक्रिय विश्वासियों की संख्या हमारे सामने है। आज समृद्ध समाज के अनेक जन कलीसिया के सदस्य हैं, परंतु झूठे भक्तों की कमी नहीं है। वे नया जन प्राप्त जन नहीं है। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसके 6 पद में स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। वह प्रत्येक संतान की अग्नि परीक्षा लेता है, जिस प्रकार हम सोने को आग में परखते हैं। सताव का समय सिद्ध करेगा कि कितने विश्वासी सच्चे हैं। कलीसिया में भी परमेश्वर के बचे हुए विश्वासी हैं। मेरे मित्रों, इस्राएल में भी विश्वासियों का बचा हुआ समुदाय है। प्रत्येक देश में विश्वासियों का बचा हुआ एक समुदाय है, जो संभवतः कलीसिया के सदस्य ना हो। दुर्भाग्य से कलीसियाओं का व्यवहार अनेक विश्वासियों के लिए द्वार बंद करता है, परंतु परमेश्वर के भक्त अब भी जीवित हैं और पाए जाते हैं। धर्मशास्त्र में बचे हुए एक अति महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है, इसे अनदेखा ना करें। मीका के युग में परमेश्वर कहता है कि वह पीड़ितों को एक समुदाय बनाएगा, जिनसे वह एक दृढ़ राष्ट्र बनाएगा और सबके लिए उन पर सियोन पर्वत से राज्य करेगा और वे सब उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। यह क्या ही सौभाग्य की बात है। मीका नबी की पुस्तक 4 अध्याय उसके 8 पद में आगे लिखा हुआ है, हे एदेर के गुम्मट, हे सियोन की पहाड़ी, पहली प्रभुता अर्थात यरूशलेम का राज्य तुझे मिलेगा। लिखा है हे एदेर के गुम्मट, हे सियोन की पहाड़ी। परमेश्वर उस देश की भूमि को संबोधित करके कह रहा है कि वे दाऊद और सुलेमान का राज्य फिर देखेंगी। उनसे भी कहीं बढ़कर प्रभु यीशु का राज्य आएगा। उसका राज्य अभी नहीं आया है। यदि वे स्वदेश में आ गए हैं तो वह केवल महाक्लेश के लिए। प्रभु राज एक भावी घटना है। आप कल्पना करें कि एक समय प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर थे। लोगों ने उसे राजा कहकर के स्वीकार नहीं किया। उस पर दोष लगाए गए कि वह यहूदियों का राजा है, परंतु वही राजा बन करके राज्य करेगा। तब उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया था। मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन आप इस पर विचार करके देखें कि जिसे लोगों ने सोचा कि यह तो अपने आप को राजा कह रहा है, लेकिन वह वास्तव में है और था। आइए हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे निकट भविष्य के बारे में। यह एक प्रकार से सूर्य को छिपाने वाला बादल है। अधिकांश बाइबल ज्ञाताओं के विचार में अगले दो पद बेबीलोन की बंधुआई के विषय में हैं। मीका नबी की पुस्तक 4 अध्याय उसके 9 और 10 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, अब तू क्यों चिल्लाती है? क्या तुझ में कोई राजा नहीं रहा? क्या तेरा युक्ति करने वाला नष्ट हो गया, जिससे सच्चा स्त्री के समान तुझे पीड़ा उठती है? हे सियोन की बेटी, जच्चा स्त्री के समान पीड़ा उठाकर उत्पन्न कर, क्योंकि अब तू गढ़ी में से निकलकर मैदान में बसेगी, वरन बेबीलोन तक जाएगी, वहीं तू छुड़ाई जाएगी, अर्थात वहीं यहोवा तुझे तेरे शत्रुओं के वश में से छुड़ा लेगा। मेरे मित्रों, ये पद ऐसा स्पष्ट वर्णन करते हैं कि मेरे विचार में बेबीलोन की बंधुआई की भविष्यवाणी प्रतीत होते हैं। लिखा है, हे सियोन की बेटी। सियोन की बेटी से मीका का संकेत यहूदा के दक्षिणी राज्य की ओर है। कहता है, जच्चा स्त्री के समान पीड़ा। मानव जाति के आधे जन जच्चा की सी पीड़ा को नहीं समझ सकते, केवल स्त्रियां ही इस पीड़ा को समझती हैं। मैं केवल इतना ही जानता हूं कि मैंने अपनी पत्नी को इस पीड़ा में देखा है। इस पीड़ा को लंबे समय तक सहन नहीं किया जा सकता है। राजा नबूकदनेस्सर ने 3 बार यहूदा पर आक्रमण किया और तीसरी बार उसने मंदिर और संपूर्ण यरूशलेम को ध्वंस कर दिया। इस कष्ट को प्रसव पीड़ा के समान बताया गया है, क्योंकि यह क्षणिक था। यदि ये कष्ट लंबे समय तक रहता तो यहूदियों का सर्वनाश हो जाता, उनका अस्तित्व ही इस पृथ्वी पर से मिट जाता। वे उसे लंबे समय तक सहन नहीं कर पाते। वह अत्यधिक भयानक और कष्टकारी था। यही कारण है कि महाक्लेश भी अधिक समय तक नहीं रहेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 22 पद में प्रभु यीशु महाक्लेश के विषय में कहता है कि यदि वे दिन कम न किए जाते तो कोई नहीं बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वह समय कम किया गया है। जी हां, चुने हुओं के कारण उस सताव के समय को कम कर दिया गया है। यहां पर हम पढ़ रहे हैं, लिखा है, तू गढ़ी में से निकलकर मैदान में बसेगी, वरन बेबीलोन तक जाएगी। जब नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम को जीत लिया था, तब बचे हुए नागरिक भागकर मैदान में रहने लगे, परंतु वे पकड़कर बंधुआई में ले लिए गए। यहां मीका इसराइल की बंधुआई से आगे बेबीलोन द्वारा यहूदा की बंधुआई को देख रहा है, तथापि अगले ही पल वह उनके उद्धार का दर्शन देखता है। कहता है, वहीं तू छुड़ाई जाएगी, अर्थात वहीं यहोवा तुझे तेरे शत्रुओं के वश में से छुड़ा लेगा। यद्यपि वे बेबीलोन की बंधुआई में थे, परमेश्वर ने कुसरू के द्वारा उन्हें छुड़वाया। इसे हम यशाया नबी की पुस्तक 44 अध्याय उसके 28 पद, दूसरे इतिहास की पुस्तक 36 अध्याय उसके 22 और 23 पद में पढ़ते हैं। मीका जो कहना चाहता है वह यह है कि परमेश्वर की प्रजा की पीड़ा का अंत आनंद में होगा। अब हम देखते हैं दूरस्थ भविष्य। पहले हमने देखा निकट भविष्य, अब हम देखते हैं दूरस्थ भविष्य। इस अंतिम अंश में मीका दूर के भविष्य में महाक्लेश के अंतिम युद्ध की भविष्यवाणी कर रहा है। यह युद्ध हर्मगिदोन का युद्ध नहीं है। तो आइए हम पढ़ते हैं मीका नबी की पुस्तक 4 अध्याय उसके 11 पद। मीका 4 उसके 11 पद में लिखा है, अब बहुत सी जातियां तेरे विरुद्ध इकट्ठी होकर तेरे विषय में कहेंगी, सियोन अपवित्र की जाए और हम अपनी आंखों से उसको निहारें। लिखा है, बहुत सी जातियां तेरे विरुद्ध इकट्ठी होकर। इसका अर्थ है कि वह बेबीलोन के आक्रमण की अपेक्षा किसी और की चर्चा कर रहा है। अन्य भविष्यद्वक्ताओं ने भी अनेक जातियों द्वारा इसराइल के विरुद्ध खड़े होने की चर्चा की है। उदाहरण के लिए योएल नबी की पुस्तक 3 अध्याय में, जकरिया के पुस्तक 12 और 14 में, यहेजकेल नबी की पुस्तक 38 और 39 पद में आदि सब महाक्लेश के समय हर्मगिदोन के युद्ध की भविष्यवाणी करते हैं। परंतु यहां पर यह ऐसा नहीं है। मीका नबी की पुस्तक 4 अध्याय उसके 12 पद में लिखा हुआ है, परंतु वे यहोवा की कल्पनाएं नहीं जानते न उसकी युक्ति समझते हैं कि वह उन्हें ऐसा बटोर लेगा जैसे खलिहान में पूले बटोरे जाते हैं। यहां पर कहता है कि वे यहोवा की कल्पनाएं नहीं जानते न उसकी युक्ति समझते हैं। जी हां, वे नहीं जानते कि परमेश्वर क्या करेगा। वे आंख बंद करके इसराइल के विरुद्ध आएंगे, परंतु जानते नहीं कि वे परमेश्वर के दंड की ओर बढ़ रहे हैं। यह परमेश्वर का काम है, यह उनका नहीं है, इसलिए वे नहीं जानते कि वे दंड की ओर बढ़ रहे हैं। आज हम भी अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ते हैं और उन कार्यों को करते हैं जिसे हमें नहीं करना चाहिए, और हम इस बात को नहीं जानते कि इसका परिणाम क्या होगा, और अंततः हम दंड पाते हैं। जी हां, यदि आप पाप में जीवन जी रहे हैं तो थोड़े समय के लिए आपके जीवन में शांति है, आनंद है, पैसा है, सुख है, परंतु एक समय ऐसा आएगा कि आपको दंड भोगना पड़ेगा। इसीलिए यहां पर कहा गया है कि उन्हें पता नहीं है कि वे दंड की ओर बढ़ रहे हैं। हम में से कई लोग आज दंड की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए सावधान होने की आवश्यकता है। मीका 4 अध्याय के 13 पद में आगे कहता है, हे सियोन, उठ और दावनी कर, मैं तेरे सींगों को लोहे के और तेरे खुरों को पीतल के बना दूंगा, और तू बहुत सी जातियों को चूर चूर करेगी, और उनकी कमाई यहोवा को और उनकी धन संपत्ति पृथ्वी के प्रभु के लिए अर्पण करेगी। कहता है, हे सियोन, उठ और दावनी कर। संसार की जातियां दावनी स्थल में पुलियों की नाई होंगी और इसराइल उन्हें कूटेगा। आज इसराइल अन्य देशों पर निर्भर एक दुर्बल राष्ट्र है, परंतु उस दिन वे परमेश्वर पर निर्भर होंगे। भजन संहिता 75 के 6 पद में लिखा है, क्योंकि बढ़ती न तो पूर्व से न पश्चिम से और न जंगल की ओर से आती है, और पद 7 में भजनकार कहता है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है, वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। उस समय इसराइल की सहायता न तो उत्तर दिशा रूस से, न दक्षिण दिशा मिस्र से, न पश्चिम अर्थात अमेरिका से और यूरोप से, न पूर्व अर्थात चीन और अरब राष्ट्रों से आएगी। उनकी सहायता आकाश और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर यहोवा से आएगी। जी हां, उसकी सहायता कहां से आएगी? यहोवा से आएगी। ये अंतिम 3 पद भविष्य में महाक्लेश के अंत में होने वाले युद्ध के विषय भविष्यवाणी है। यह युद्ध हर्मगिदोन में होगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर ही है जो हमें बढ़ाता और घटाता है। कई बार हम अपने जीवन में असहाय महसूस करते हैं, परंतु जब हम उसकी ओर दृष्टि करते हैं तब वह हमारे जीवन में अपनी शांति को प्रदान करता है। भजन संहिता 34 के 5 में लिखा है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। कहने का अर्थ यहां पर यही है कि जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, जो परमेश्वर की ओर निहारते हैं, वे कभी भी लज्जित नहीं होते, वह कभी भी लज्जित होने नहीं देता है। आज हम किसकी ओर दृष्टि लगाए बैठे हैं? क्या हम संसार की ओर अपनी दृष्टि उठाए हैं या अपने उस जीवित परमेश्वर की ओर? यहां पर इसराइल के लोगों के लिए परमेश्वर कहता है कि उनके जीवन में वह अद्भुत काम करेगा, उन्हें छुटकारा देगा। आज वही परमेश्वर आपके जीवन में भी छुटकारा देगा, शांति देगा और आपके जीवन को आनंदमय बनाएगा। क्या आप उस परमेश्वर को और अधिक जानना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं? यदि हाँ तो आप प्रभु यीशु के पास आइए और प्रभु से कहिए कि प्रभु आप मेरी सहायता करें, मैं आपके बारे और अधिक जानना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप अपने जीवन में एक सही निर्णय लेंगे और आज आपने इस वचन के द्वारा अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त किया है। प्रभु आप सबके साथ हो और आप सबकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
Yeah।